ओम शांति, ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर गुण के ऊपर चर्चा करेंगे और वो गुण है रहम दिल। कुछ दिन पहले मैं हरियाणा में गई थी तो वहाँ एक शिक्षा संस्थान में हमको बुलाया गया। जब बच्चों और शिक्षकों के सामने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की बातें हमने की तो हमारी बातें पूरी होने के बाद एक लेक्चरर बहन ने एक सवाल पूछा। सवाल ये था, थी तो वो नॉन बीके, लेकिन कहीं से उसको जानकारी मिल गई होगी, तो उसने सवाल ये पूछा कि आपकी एक दादी है और उस दादी का नाम गुलजार दादी है, उसके तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपकी वो दादी नहीं रहेगी तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा किसके तन में आएंगे। तो मैंने कहा, बहन जी आपने तो बड़ा ही ना पूछने योग्य सवाल पूछ लिया, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तो आप अपने बच्चों की माँ हैं, कल आप नहीं रहेंगी तो आपके बच्चों की माँ कौन बनेगी, ये सवाल कोई पूछने का सवाल होता है क्या? तो जो बच्चे थे, बच्चे तो कैसे होते हैं आप सब जानते, उन्होंने ताली बजाई, उस ताली का भी अर्थ आप समझ गए होंगे, लेकिन जो मेरे साथ बैठा हुआ भाई था, बाहर निकलने के बाद उसने मुझे कहा कि बहन जी मुझे उस बहन पे बहुत रहम आया। तो मैं मन में सोचने लगी कि देखो जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो तो किसी की गलती को या ऐसी बात को देख के या तो उसका मजाक उड़ाएगा या उसकी कोई कमी कमजोरी देखेगा, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसके मन में क्या आएगा, दया आएगी, रहम आएगा। तो मैंने उसको कहा हाँ मुझे भी उस पे रहम आया, और उसके बाद मैं इस रहम के गुण पे चिंतन करने लगी। तो चिंतन करते करते बाबा की कई बातें स्मृति में आई, जैसे बाबा ने पिछले दिनों ही एक मुरली चलाई थी, आपको याद होगा, अहम वहम और रहम पर। उसमें बाबा ने कहा था कि जो बच्चे बाप समान विश्व कल्याणकारी हैं, उनकी एक सबसे बड़ी खूबी होगी कि उनके अंदर रहम दिली बहुत होगी। और बाबा ने ऐसी आत्मा की कई विशेषताएं सुनाई, बाबा ने जो विशेषताएं सुनाई उनका भी बहुत गहरा अर्थ है। जैसे बाबा ने पहली विशेषता सुनाई कि ऐसी जो आत्मा होगी उसको निरंतर स्मृति में होगा कि समय कम है और कार्य बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे थोड़े समय में बहुत गैलप करना है, बहुत काम करना है, तो मैं अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट सफल करूं। जब इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो बाबा ने बच्चों को कहा था, बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, तो भाई बहन पूछते हैं कि बहन जी उसके बाद तो 78 दिवाली आ चुकी है, और बाबा ने कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी, तो वास्तव में बाबा ने ये क्यों कहा था? बाबा ने इसलिए कहा था कि उस समय बाबा के सामने बच्चे तो 400 थे और दुनिया की आबादी तो उस समय 100 करोड़ से भी ज्यादा थी। अगर 400 बच्चों को 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना हो तो उनके लिए दिवाली आएगी क्या? उन्हें तो इतना काम करना पड़ेगा कि कल भी नहीं आएगा, अर्थात आज के एक एक सेकंड को सफल करना पड़ेगा। और इसलिए बाबा ने बच्चों का एक एक सेकंड सफल कराया, दिन भी रात भी योग कराया, सेवा कराई। बाबा खुद भी 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से सोते थे और उसका परिणाम ये निकला कि वो 400 बच्चे आज देखो कितनों तक पहुंच गए। बाबा ने वो मंत्र दिया। तो जो रहमदिल आत्मा है वो ये नहीं सोचेगी कि कर लेंगे हो जाएगा, वो ये कहेगी कि समय तो है ही नहीं और काम इतना ज्यादा पड़ा है तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊं। और दूसरी बात बाबा ने कही, रहमदिल आत्मा अपने प्राप्त हुए तन मन और धन के खजानों को विश्व सेवा में लगाएगी। अब इसके पीछे भी बहुत गहराई है। अगर अपन किसी प्राप्ति को अपने लिए लगाते हैं तो उसका कितना फल निकलेगा। अपने लिए लगाया तो केवल एक व्यक्ति खुश हुआ, अर्थात केवल मैं आत्मा, और वो भी अल्पकाल के लिए। लेकिन अपने पास जो खजाने हैं उनको अगर अपने विश्व सेवा में लगाया तो कितनी आत्माएं उससे खुश होंगी, कितनी आत्माएं लक्ष्य प्राप्त करेंगी, प्रेरणा प्राप्त करेंगी, कितनी आत्माओं को बल मिलेगा। तो जो रहमदिल आत्मा होगी वो अपने रिसोर्सेज को स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी खुशी के लिए यूज ना करके सदा दूसरों को देगी। और तीसरी बात बाबा ने बताई, ऐसी आत्मा सदा बेहद की बात सोचेगी। उसकी आंखों के सामने जो दुनिया के कोने कोने में अनेक आत्माएं हैं जो अभी तक भगवान के वरदानों से वंचित हैं, वो घूमती रहेंगी और उसके हर संकल्प में उनके लिए दुआ निकलेगी कि किसी तरह इन्हें भी वरदान मिल जाए, ये भी प्राप्ति स्वरूप बन जाएं, ये वंचित ना रह जाएं। अर्थात मैं आगे बढ़ूं इस बात के बजाय वो सदा ये सोचेगी कि दूसरे आगे बढ़े, उसमें मेरा आगे बढ़ना तो शामिल ही है। और चौथी बात बाबा ने ये बताई कि जो रहमदिल आत्मा होगी वो प्रोग्राम प्रमाण सेवा नहीं करेगी। मुझे प्रोग्राम मिले तो मैं कर लूंगा, या दिनचर्या में जो निश्चित बातें हैं उनको कर लूंगा, वो अपने प्रोग्राम बनाएगी, अपनी प्रेरणा से अपने को बिजी रखेगी, अपने लिए सेवा के साधन ढूंढेगी, साधना के साधन ढूंढेगी। और पांचवी बात बाबा ने बहुत विस्तार में बताई। बाबा ने कहा, ऐसी जो रहमदिल आत्मा होगी उसके सामने चाहे कोई कितनी भी अवगुणी आत्मा आए, पत्थर बुद्धि आत्मा आए, बेअकल आत्मा आए, नेगेटिव आत्मा आए, विघन वाली आए, विरोधी आत्मा आए, लेकिन उसको देख करके भी वो लवफुल और लवफुल रहेगी। अर्थात उस आत्मा के संस्कारों का प्रभाव अपने पर नहीं आने देगी, लेकिन जो अपने ब्राह्मणपन के संस्कार हैं, दिव्य संस्कार हैं, उनका प्रभाव दूसरे पर डालेगी। और बाबा ने ये कहा कि रहम के मार्ग में 2 बातें बाधक बनती हैं, जिनका हमने शुरू में वर्णन किया, एक वहम और एक अहम। लेकिन जो रहमदिल आत्मा है वह किसी के अहम को भी खत्म कर देगी अपनी युक्ति से और वहम को भी खत्म कर देगी। वहम के लिए बाबा ने कहा था कि वो दूसरी आत्माओं के बारे में ये सोचेगी कि ये तो कुछ भी नहीं है, और अहम वाला ये सोचेगा मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन रहम वाला इन दोनों से परे सामने वाले का परिवर्तन करेगा। लौकिक दुनिया में एक कहावत कहती है कि बहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। लेकिन अगर आपने हकीम लुकमान के जीवन का किस्सा सुना हो तो उसके पास वास्तव में अहम की भी दवा थी और बहम की भी दवा थी। उसकी जीवनी में आता है कि बाल्य काल में वो एक बहुत अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करता था। उस जमाने में गुलाम रखने की प्रथा थी और गुलामों के साथ लोग मनचाहा व्यवहार करते थे, तो जो उसका मालिक था वो भी अपने गुलामों के साथ मनचाहा व्यवहार करता था, इसके साथ भी करता था। तो एक बार उसने हकीम लुकमान को कहा कि जाओ खेत में गेहूं बो के आओ। तो ये देखता था कि मेरा मालिक इतना अहंकारी है, इतने पाप कर्म करता है, इतना क्रोध करता है, इतना अन्याय करता है, इसका आगे जाकर क्या बनेगा, इसको इन पापों की बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, मैं कैसे इसको बचाऊं पापों से। बड़ी दया आती थी और वो इसको डांटता था। तो ये कुछ लोगों को लेके खेत में गया और इसने खेत में जो बो दिए। वापस लौटा तो मालिक ने पूछा गेहूं बो आए? बोला हाँ बो आया। तो जो इसके साथी थे उन्होंने कहा अरे हमने तो गेहूं बोया ही नहीं, जो बोए खेत में। तो बोला तुम कुछ बोलो मत, मालिक को कुछ मत बोलना। कुछ दिनों के बाद पौधे बड़े हुए, अब गेहूं और जौ के पौधे तो एक जैसे ही होते हैं, मालिक को फिर भी नहीं पता पड़ा। बालियां निकल आई तब भी कुछ खास पता नहीं पड़ा, लेकिन जब कटाई हुई और जब उनमें से जौ निकले तो मालिक का तो गुस्सा आसमान पे। उसने लुकमान को बुलाया, मैंने तुमको कितनी बार पूछा था तुमने गेहूं बोए और तुमने कहा था कि मैंने गेहूं बोए, तो ये जौ कैसे निकल आए? तो उसने कहा मालिक मैंने तो गेहूं ही बोए थे, लेकिन मैं क्या करूं, कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि बीज कोई और बो और फल कोई और निकले। बोला नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता, हम जो बीज बोएंगे ना वही फल निकलेगा। तो बोला मालिक आप ये जो क्रोध के अन्याय के अहंकार के बीज बो रहे हो इनके फल क्या निकलेंगे? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इनके फल बदल जाएंगे और जैसे गेहूं के बदले जो पैदा हो गए ऐसे आपके भी ऐसे ही होगा। तो उसका विचार चला मालिक का, बात तो ठीक कह रहा है, जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। तो उसने लुकमान को कुछ नहीं कहा लेकिन खुद सोच में डूब गया और उसने अपने आप का परिवर्तन किया। कहने का अर्थ ये कि जो व्यक्ति रहमदिल होता है वो सामने वाले का परिवर्तन कर देता है। बेशक उसको डांट भी पड़ी, अपमान भी हुआ, लेकिन उसने उसके हृदय को बदला। तो बाबा भी कहती हैं जो सच्चा रहमदिल होता है ना वो डांट का और अपमान की परवाह नहीं करता, लेकिन वो अपने गुण को छोड़ता नहीं है। उसका जो दिल होता है ना वो मक्खन की तरह से बड़ा स्निग्ध होता है। अब मक्खन जब पिघलता है तो क्या करता है, सामने वाली खुरदरी चीज को भी चिकना बना देता है। तो जिसका हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है वो जिसके भी संपर्क में आएगा क्या करेगा, उसका भी खुरदुरापन मिटा दे। तो बाबा ने कहा कि जो रहमदिल आत्मा होगी उसमें सबसे पहला गुण होगा वो सामने वाले को अक्षमा करेगी। और बाबा ने कहा बच्चों को तो सबको अक्षमा करना ही चाहिए, क्योंकि देखो बाबा भी सबको अक्षमा करते हैं। बाबा ने आपको अक्षमा किया, जब आपको अपना बनाया तो आप कितने अवगुणी थे, 63 जन्मों के पाप का बोझ आपके सिर पे था, इस जन्म के भी कितने विकर्मों के दाग थे, झूठ पाप देह अभिमान सब कुछ था, लेकिन पहले बाबा ने आपको अक्षमा किया और उसके बाद फिर अपना बना लिया। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी बाकी आत्माओं को क्षमा करो तीन बातों के कारण। पहली बात तो ये है कि आप सबके पूर्वज जो बाप समान हो, तो जो बाप होता है बड़ा होता है वो बच्चों को माफ करता है। दूसरा बाबा ने कहा आप राजा बनने वाले हो, तो जो राजा होता है वो भी प्रजा को माफ कर सकता है। आपको पता होगा हमारा जो भारत का कानून है उसमें ये प्रावधान है कि जब किसी आदमी को फांसी दी जाती है, सजा होती है, तो उससे पहले राष्ट्रपति के पास वो सजा की कॉपी जाती है। मान लो राष्ट्रपति उसे माफी दे दी तो सजा माफ हो जाती है, और अगर वो नहीं माफी दे तो सजा हो जाती। तो बाबा ने कहा देखो जो राजा होता है उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो किसी को माफ कर सकता है। तो आप भी तो भविष्य में राजा बनने वाले हो ना, इसलिए आपके अंदर भी ये ताकत है कि आप किसी इतने बड़े क्रिमिनल को भी माफ कर सकते हो। और तीसरा बाबा ने कहा आप भक्तों के इष्ट हो। तो लोग जब मंदिर में जाते हैं तो अपने इष्ट को क्या कहते हैं, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर दो, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अवगुणी हूँ। तो इष्ट का भी काम क्या है, अपने भक्तों को माफ कर देना, उनकी बुराइयों को भुला देना। तो बाबा ने कहा आपको भी क्षमा करना है, लेकिन क्षमा करने से काम नहीं चलेगा, इससे आगे बाबा ने और भी काम दिया। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं अगर वो किसी की बुराई देखते हैं, पाप देखते हैं, तो उसे नफरत करने लगते हैं। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, एक के अंदर बुराई है और दूसरा उससे नफरत करता है, तो दोनों बराबर हो गए, कौन बड़ा और कौन छोटा। दूसरी प्रकार के लोग वो होते हैं जो किसी की बुराई को देख करके किनारा कर लेते हैं, जाने दो इसे बात ही नहीं करनी, कहीं इसका संग ना लग जाए, कहीं इसके साथ हम भी बदनाम ना हो जाएं, अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। तो वो बुरे तो नहीं है, लेकिन पहले वाले से थोड़े उत्तम क्वालिटी के हैं, भाई नफरत नहीं की, किनारा कर लिया। लेकिन जो सर्वोत्तम क्वालिटी के होते हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई इसके अंदर ये कमी कमजोरी है तो मैं इसके लिए शुभ भावना रखूं ताकि इसकी ये कमी खत्म हो, ऐसी मैं अंदर शुभ भावना रखूं, इतना इसके ऊपर रहम करूं, इतनी दया करूं कि उस प्यार की बदौलत इसका ये स्वभाव बदल जाए, तो वो सर्वोत्तम क्वालिटी के होते हैं। तो बाबा ने कहा आप अपने से पूछो कि हम कौन सी क्वालिटी के हैं, पहली दूसरी या तीसरी। तो बाबा ने कहा जो तीसरी क्वालिटी अर्थात सर्वोत्तम क्वालिटी वाला है वो क्या करेगा, पहले क्षमा करेगा और क्षमा करने के बाद उस आत्मा को उसी नजर से देखेगा जिस नजर से बाबा उसे देखते हैं, अर्थात उसके बारे में सोचेगा कि तुम तो बहुत ऊंचे कुल के हो, ब्राह्मण कुल के हो, देवताई कुल में जाने वाले हो, परमात्मा के डायरेक्ट संतान हो, तुम तो अपने मूल स्वरूप में आदि अनादि स्वरूप में बहुत पवित्र हो, बेदाग हो, तुम तो इस दुनिया के हीरो एक्टर हो, पूरे चारों युगों में पार्ट प्ले करने वाले हो, इस तरह से उसके बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचेगा और इतनी ऊंची बातें सोच करके उसके स्वमान को बढ़ा देगा। अगर वो सुनेगा नहीं तो भी, अगर वो ऊंची बातें सोचता है तो उसके वाइब्रेशन तो फैलते ही। और फिर बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे पुराने जमाने में राजपूत राजाओं की हिम्मत को कैसे बढ़ाया जाता था, हिम्मत इनको भी हिम्मतवान कैसे बनाते थे, उनके जो पूर्वज हैं उनकी वीर गाथाएं उनको सुनाई जाती थी, तुम किस कुल के हो, तुम्हारे दादे परदादों की क्या खासियत थी, तुम्हारा परदादा इतने शत्रुओं से घिरा और फिर भी जीत पहन करके आया, अरे तुम ऐसे कुल के और इस छोटे से युद्ध से डरते हो, अरे तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारे रग में खून ही विजय का है, तुम्हारी हार हो ही नहीं सकती, ऐसे करके उन राजपूत राजाओं को उमंग दिया जाता था। और उमंग देने के लिए चारण और भाट होते थे जो उनका ये शोगान गाते थे, उनकी वीर गाथा गाते थे। एक कहानी तो हमारी बहुत प्रचलित है जो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि एक बार एक मुस्लिम बादशाह ने कुछ राजपूत राजाओं की कंपटीशन दिल्ली दरबार में रखी थी। एक पत्थर था बहुत बड़ा और इस पत्थर को लेकर कंपटीशन थी कि जो इसे एक हथौड़े में तोड़ देगा उसे सबसे वीर माना जाएगा। तो बहुत सारे गए और एक हथौड़े में तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तो लास्ट में एक दुबला पतला राजपूत राजा जब हथौड़ा उठाने लगा तो सारे लोग हंस पड़े, बोला इससे तो हथौड़ा ही नहीं उठेगा, मारने की बात तो दूर है। लेकिन वो अपने नशे में चलता गया और उसके साथ दो लोग और पीछे पीछे गए, तो उन दो लोगों को रोका गया, बोला देखो हथौड़े को ये अकेला ही उठाएगा, तुम लोग साथ साथ क्यों जा रहे हो? बोला जी हम हथौड़े को हाथ नहीं लगाएंगे। तो बोला तुम साथ क्यों जा रहे हो? बोला जी हम गीत गाएंगे। तो उसके नजदीक खड़े होके वो चारण और भाट थे, उन्होंने गीत गाना शुरू किया। उस गीतकार ये था कि भाई तुम तो एक ऐसे कुल के हो जिस कुल ने कभी हार ही नहीं खाई, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना आखिरी खून का कतरा तक बहा दिया, ऐसे बहादुर कुल के तुम हो। और ऐसे जब गीत गाए तो उस राजा के रगों का खून गर्म हो गया और उसने एक ही हथौड़े में पत्थर के कई टुकड़े कर दिए। तो बाबा भीम बच्चों को कहती हैं कि जो कमजोर आत्मा है, देखने में लगता है ये कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जब आप उस आत्मा को उसके कुल की, उसके महान वंश की, जब उसके स्वमान की याद दिलाते हो तो उसकी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं और उसमें भी महान काम करने की शक्ति आ जाती है। तो बाबा ने कहा रहम दिल का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को कहो तू तो कमजोर ही है, तू तो ये कुछ कर ही नहीं सकेगा, रहने दो तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा। ये वास्तव में अटैचमेंट है, बहुत अटैचमेंट होती है ना तो भी हम ऐसा ही करते हैं। जैसे रामायण में राजा दशरथ की अपने पुत्रों से बड़ी अटैचमेंट थी, तो जब विश्वामित्र लेने आया कि मुझे राक्षसों का इनसे वध करवाना है, तो दशरथ को एकदम मोह आया, मेरे छोटे छोटे सुकुमार बच्चे धनुष कैसे उठाएंगे, वो मारिच तो बहुत बड़ा राक्षस है, उसको कैसे मारेंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। और पीछे खड़ी रानियां भी इशारा कर रही थी हमारे बच्चों को भेजना नहीं, हमारे बच्चों को भेजना नहीं, ये बच्चे युद्ध के लायक है, ये बच्चे युद्ध कैसे करेंगे। लेकिन विश्वामित्र को पता था कि इनकी जो आंतरिक शक्ति है वो कितनी महान है, वो ले भी गया, युद्ध भी करवाया, युद्ध में दोनों बच्चे विजयी भी बने। और फिर उस युद्ध के बाद उन बच्चों ने और क्या क्या करामात की वो तो अपन रामायण में सुनते हैं। तो वास्तव में हम किसी को कमजोर क्यों समझते हैं? क्योंकि हम ना तो खुद स्वमान में हैं और ना अगले का स्वमान जगा पाते, इसलिए अटैचमेंट में आके या फिर कई बार नफरत में आकर के भी सामने वाले को कमजोर या सामने वाले की बुराइयों को देखना शुरू कर देती। लेकिन जो सच्चा रहम दिल है वो हमेशा सामने वाले की दबी हुई शक्तियों को जगाएगा। अगर अभी शक्तियां दिख नहीं रही होंगी तो भी उनको प्रत्यक्ष कर देगा अपने हाव भाव से और अपने बोलों से। इसलिए बाबा ने कहा कि जो रहम दिल है वो अगर किसी की कमी कमजोरी बताएगा भी तो कैसी, जैसे एक डॉक्टर होता है ऑपरेशन करता है तो पहले क्या करता है, बाबा बहुत बार हम बच्चों को बताते हैं कि देखो ऑपरेशन से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आजकल तो ऑपरेशन से पहले काउंसलिंग भी होने लगी है और ऑपरेशन से पहले उसकी कितनी तरह की चेकिंग होती है, उसकी ड्रेस बदली की जाती है, कितनी सारी नर्स और ये सब उसकी सेवा में रहती हैं, और फिर ऑपरेशन करने से पहले उसको बेहोश करते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है। अब ऑपरेशन से पहले बेहोश कर दिया तो डॉक्टर जैसी मर्जी चाकू चला ले, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। और बेहोश किए बिना अगर डॉक्टर चाकू चलाए तो वो अपना भी नुकसान करेगा, डॉक्टर का भी नुकसान करेगा। तो बाबा ने कहा कई बार आप बच्चे बिना बेहोश किए बिना ही चाकू चला देते हो, सामने वाले की महिमा तो करते नहीं हो, उसके कुछ गुणों का बखान तो करते नहीं हो, और बिना गुणों का बखान किए सीधा उसके अवगुण उसको सुनाने लग जाते हो, तो क्या करेगा वो, तो चीख मारेगा। आपने बिना बेहोश किए ऑपरेशन कर दिया, वो तो भागेगा आपको छुड़ा करके, नहीं नहीं मैं इसके सामने नहीं रहूंगा, देखो ये मेरे बारे में क्या क्या बोलता है, दोबारा आपके सामने आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा बेहोश कर दिया तो कुछ नहीं बोलेगा। और इसके लिए बाबा ने एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा जैसे एक किसान होता है तो बीज बोने से पहले कितनी तैयारी करता है, बीज बोने से पहले खेती अर्थात खेती की जमीन को पहले हल चलाएगा, गीला करेगा, खाद छिड़केगा, खरपतवार निकालेगा, उसमें अगर कंकर पत्थर चट्टान के टुकड़े हैं तो उनको भी निकालेगा। और ये सब कुछ करने के बाद जब वो जमीन बिल्कुल खोखली हो जाएगी तब उसमें बीज डालेगा और वो बीज बहुत अच्छे से अंकुरित भी होगा और फलेगा भी। मान लीजिए किसान सोचता है इतनी मेहनत कौन करे, ये बीज तो पड़े ही है मैं ऐसे ही डाल दूं। तो अगर 100 बीज डालेगा तो उसमें से 2 बीज ही निकलेंगे और वो भी पता नहीं कितने लंबे होंगे, क्या पता अंकुरित होने के बाद आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे जाएंगी नहीं, जमीन खोखली नहीं। तो बाबा ने कहा एक किसान से भी सीखो, जैसे पहले भूमि को तैयार करके और उसके बाद बीज डालता, ऐसे आप बच्चों को अगर किसी को कोई बात देनी है, कोई सावधानी देनी है, कोई शिक्षा देनी है, उसको कोई परिवर्तन के लिए बात कहनी है तो पहले उसकी जमीन को तैयार करो। जमीन तैयार करने के भी 2 तरीके, एक तरीका है कि हम अंदर से शुभ भावना रखते हैं और दूसरा तरीका है कि वाणी से उसको ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन सामने होगा उसकी भूमि को तुम वाणी से तैयार कर लेंगे, लेकिन जो सामने नहीं है उसके लिए फिर हमें सूक्ष्म मनसा सेवा के द्वारा उसकी भूमि को तैयार करना पड़ेगा। जो आत्माएं हमसे दूर है लेकिन हम उनकी झोली भरना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, बाबा से उन्हें मिलाना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारी मनसा शक्ति है। हम अपने मनोबल के द्वारा, मनसा वाइब्रेशन के द्वारा उन आत्माओं को अपने सम्मुख महसूस करें और फिर मन ही मन उनको बताएं कि आप सब परम धाम से आई हुई कितनी महान आत्माएं हो, बाबा के बिल्कुल करीब थी आप सब आत्माएं, आप परमात्मा के ही बच्चे हो, परमात्मा की गोदी से ही निकल के आए हो, और मैं तो आपको केवल याद करा रही हूँ, याद करो, आपको केवल याद करना है बाकी कुछ नहीं करना, ज्ञान आपके पास है, आप केवल याद करो अपने भीतर जा करके कि आपका घर कौन सा था, आपका पिता कौन था, तो आपको सारी बातें स्मृति में आएंगी। ये कोर्स आप मनसा के द्वारा आत्माओं को करा सकते हो, एक दिन आप उसे उसके स्वरूप की स्मृति दिलाओ मनसा द्वारा, अगले दिन घर की स्मृति दिलाओ, बाप की स्मृति दिलाओ, 84 जन्मों की स्मृति दिलाओ, और फिर आप इसका परिणाम देखो कितना अच्छा निकलेगा। साकार में जब वो आत्मा सामने आएगी तो आपके ज्ञान को ऐसे अंदर ले जाएगी जैसे लोग कहते हैं बालू में पानी समा जाता है, ऐसे उसके अंदर ज्ञान समाता चला जाएगा, क्योंकि हमने मनसा के द्वारा उसकी भूमि को तैयार कर लिया, उसको पता ही नहीं पड़ा, और वो आत्मा इतनी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई कि हमारी बातों को वो अंदर ले गई, और उसका परिवर्तन जरूर होगा। कितनी परसेंटेज में होता है ये तो उसके भाग्य पर डिपेंड करता है, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। फिर बाबा हम बच्चों के सामने पानी का एग्जाम्पल रखते हैं। देखो जो पानी है उसकी दुनिया में बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं जल ही जीवन है। जल के अंदर भी एक तो रहम की शक्ति भी बहुत है, मोल्ड होने की शक्ति भी बहुत है, एडजस्ट होने की शक्ति भी बहुत है। इसलिए लोग कहते हैं अगर आपको जीवन में सफल होना हो तो पानी को अपना गुरु बना लो, पानी से गुण सीखो। कितने गुण है पानी में, जैसा समय होगा जैसा स्थान होगा वैसा अपना रूप बना लेगा। कभी भी अपनी तरफ से ओपोजिशन नहीं करता कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे को ऐसा बर्तन चाहिए, मेरे को ऐसी जगह चाहिए, वो कुछ नहीं डिमांड करता। आप उसको जहाँ मर्जी ले जाओ, जैसी जगह मिलेगी उसी में अपनी जगह बना लेगा। और दूसरी बात देखिए, एक बहुत बड़ा पानी का टैंक भरा है, उसका बायां नल खोलो चाहे दायां नल खोलो, ऊपर से अपने तल को समतल रखेगा। अब पत्थर उठाओ तो एक तरफ गड्ढा हो जाएगा, बालू उठाओ एक तरफ गड्ढा हो जाएगा, लेकिन पानी के बर्तन में कभी गड्ढा नहीं होता। किसी भी तरफ से पानी निकालो, पानी समतल रहता है ऊपर से। ये भी पानी का बहुत बड़ा गुण है, अपने तल को समतल रखता है। और जो स्वच्छ पानी होता है वो पारदर्शी होता है, अंदर बाहर एक। जो बाहर दिखाई देता है वो उसकी तली में पड़ा, अंदर का भी सब कुछ दिखता है। तो स्वच्छता, पारदर्शिता, ये भी पानी का गुण है। और पानी का एक सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि अगर उसके मार्ग में कोई बाधक बन के आए, अवरोध खड़ा हो, उसके रास्ते को कोई रोकने की कोशिश करे, पानी कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता, कभी उससे संघर्ष नहीं करता, कभी उसके साथ टक्कर नहीं खाता। क्यों? क्योंकि पानी जानता है कि मेरी मंजिल तो बहुत दूर दूर है, मुझे बहुत बहना है, और अगर मैं इसके साथ संघर्ष करने लगा तो मेरी तो गति धीमी हो जाएगी, मेरे तो काम बहुत। तो मान लीजिए पानी के रास्ते में चट्टान आ गई, तो पानी क्या करेगा? छोटी चट्टान है तो उसके ऊपर से बहेगा, अगर बड़ी चट्टान है तो दो हिस्सों में बटेगा, आधा इधर से बहेगा आधा इधर से निकल जाएगा। अगर चट्टान के बीच में जरा सा भी उसे सुराख मिल जाए तो उसके बीच में से बह जाएगा, अर्थात वो अपनी यात्रा को जारी रखेगा, कभी नहीं कहेगा चट्टान को हटाओ तो मैं बहूं, चट्टान को हटाओ तो मैं अपनी यात्रा जारी रखूं, मैं क्या करूं, चट्टान आ गई थी इसलिए मैं खड़ा हो गया, कभी नहीं कहेगा, बहता जाएगा, आगे जाकर के एक हो जाएगा, फिर अपनी चाल जारी रखेगा। और क्या करता है, जो चट्टान के टुकड़े उसका रास्ता रोक रहे थे उनको अपने साथ बहा ले जाता है, और बहाते बहाते क्या करता है, उनके जो तीखे टेढ़े मेढ़े कोने थे, अहंकार का कोना, दुखदायी कोना, ईर्ष्या का कोना, किसी के रास्ते में विघ्न बनने वाला कोना, उन सारे कोनों को प्यार से धीरे धीरे सहलाते सहलाते, जोर से नहीं तोड़ता कभी भी, धीरे धीरे उनको खत्म कर देता है। और वो पत्थर जो किसी काम का नहीं था, लोग उसको ठोकर मारते थे, जब पानी ने उसके कोने घिसा दिए तो क्या बन गया, शालिग्राम बन गया। और अब देखो शालिग्राम की सब लोग पूजा करते हैं। तो दुनिया में लोग कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन पानी कितना रहम देला, वो कहता है जो मुझसे टकराएगा वो मेरी तरह ही पूजनीय बन जाएगा। तो लोग जल की भी पूजा करते हैं और शालिग्राम की भी पूजा करते हैं। वो गोल गोल पत्थर है, उसको घरों में सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, उस पे गुण लिखते हैं, बहुत कुछ उसका यूज होता है। तो बाबा कहते हैं जो रहमदिल आत्मा है वो सामने वाले के गुणों उभारेगी और अवगुणों के कोनों को इतना प्यार से घिसा घिसा के उसको कोमल बना देगी, उसे पता नहीं पड़ने देगी। लेकिन अपने गुण दे करके उसको भी गुणवान बना देगी। मुझे याद है मैं एक बार राजस्थान के एक सेंटर पे गई थी, तो वहाँ एक माता, उसका इकलौता बेटा, लेकिन बहुत बच्चा पढ़ा, कई धंधे किए, उसको सफलता ही नहीं मिली। तो वो बड़े प्यार से बाबा को कहती थी, अपनी कहानी सुना रही थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा हमको इस बच्चे की कमाई नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहेंगे देखो खुद तो भगत बनी बैठी है और बच्चा तो कमा के ही नहीं खा सकता, तो ये दो रोटी कमा के खाए, बस ऐसी मेरी शुभकामना है। पर मैं करूं क्या, मैं इसको कहती हूँ बेटा पढ़ ले, तो कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा, इंटरव्यू में नंबर तो आता नहीं है, लोग सिफारिश लगा लगा करके नौकरियां ले लेते हैं, मेरी तो कोई सिफारिश नहीं है, मैं कितनी जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना, किताब फेंक देता है। तो माँ ने बच्चे को कहा, बेटा आखिरी बार बाबा के कहने से आखिरी इंटरव्यू दे ले, बैंक का कोई इंटरव्यू आया। तो बच्चे ने किताब फेंक दी, बोला मेरे आगे पढ़ने का नाम मत ले। तो माता बाबा के कमरे में गई, बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दो ना, इसको कहो ना ये पढ़ ले वे। बाबा आप बैठे हो ना, फिर बाहर निकली, वो फेंकी हुई किताब उठा के उसके हाथ में पकड़ाई, बेटा बस थोड़ा सा पढ़ ले, इस बार पढ़ ले, अगली बार बेशक बस इस बार पेपर दे ले। अब माँ की थोड़ी सी शर्म रख करके दो चार लाइनें पढ़ी, उसके बाद किताब फिर रख दी। अब माँ फिर बाबा के कमरे में गई, बाबा इसको सद्बुद्धि दो ना, ये थोड़ा पढ़े ना। अगले दिन फिर वही बच्चा किताब फेंके और माँ प्यार से पकड़ाए, बेटा बस थोड़ा सा पढ़ ले। ऐसे करते करते उसने जैसे तैसे उसको थोड़ा कुछ किताब पढ़ने की थोड़ी सी समझो उस बच्चे ने पढ़ी। और 15 दिन के बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने चला गया। तो माँ ने कहा, देख जाते जाते बाबा से कह के जा, बाबा के कमरे में बैठ, बाबा से आशीर्वाद लेके जा, बाबा की दुआएं लेके जा। तो बच्चे को तो विश्वास ही नहीं था, लेकिन माँ ने कहा है तो चलो माँ के कहने से बैठ जाता हूँ, बैठ गया। इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में उसका नंबर आ गया और नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो पहले तो माँ कहती थी कि बाबा के कमरे में बैठ, लेकिन अब खुद माँ के कहने कहे बिना गया, बाबा के कमरे में बैठा, बाबा को थैंक्स दिया, लेकिन नौकरी दूर लगी, माँ बाप से दूर हो गया। तो पहली तनख्वाह मिली तो दूर से माँ को भेजी कि माँ इसका ना ब्रह्मा भोजन करवाना। फिर बाबा को कहा, बाबा नजदीक नौकरी लगे तो मैं माँ बाप के साथ रहा, वो नजदीक भी लग गई। अब नजदीक लग गई तो देखो सेंटर पे भी जाने लगा, सहयोग भी देने लगा। लेकिन ये सारी बातें कैसे हुई, क्योंकि माँ रहम दिल थे, बहुत रहम किया बच्चे पे। कुछ भी बच्चे ने बोला, उल्टा बोला, क्रोध किया, जो भी किया, लेकिन उस बात को चित्त पे नहीं रखा। चलो बच्चे को समझ नहीं है, लेकिन बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, तो बाबा तो मदद करेगा ना, पक्का विश्वास था। और बार बार उसको बाबा की तरफ खींचती रही, बाबा का प्यार उसके हृदय में जगाती रही। और आखिर माँ की उस रहम का या माँ की उस दया का देखो परिणाम निकला कि वो बच्चा बाबा का बन गया। तो परिवार के जो लोग हैं कभी भी हमसे ज्ञान नहीं सुनेंगे, परिवार के लोग हमारे रहम को देखेंगे, हमारे व्यवहार को देखेंगे, भाई हमने इनके लिए उल्टा बोला, इन्हें गुस्सा आया, हमने इनके लिए गलत किया, इन्होंने हमें माफ किया, हम बिना बताए बिना टाइम इनके पास आ गए, इन्होंने हमारी कितनी सेवा की। इन सब चीजों को देख करके जब उन्हें लगता है कि ये हमसे ज्यादा गुणवान है, हमसे ज्यादा इनके अंदर शक्तियां हैं, अगर हम इनकी जगह होते तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने किया, तब उनके ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा था, बच्चे रहम का गुण एक ऐसा गुण है कि कोई पत्थर जैसा भी होगा ना, तो वो भी इस गुण से पिघल जाएगा। अगर कोई बहुत क्रोधी होगा तो वो भी एकदम शीतल हो जाएगा। आप इस रहम के गुण को यूज करके देखो। बाबा कितने रहम दिल है। लोग बाबा को कहते हैं हे दयालु, हे कृपालु, हे रहम दिल। तो जैसा बाप है तो बच्चे भी तो वैसे ही रहम दिल, दयालु, कृपालु होने चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो व्यक्ति आपके मार्ग में विघ्न डालता है, जैसे बाबा कहते हैं जो तूफान है वो आपके लिए तोहफा है। भाई तूफान तोहफा कैसे है? तो बाबा ने कहा जैसे कोई आपके मार्ग में विघ्न डालता है, आपकी ग्लानी करता है, आप पे इल्जाम लगाता है, आपने जो गलती नहीं की वो भी आपके सिर पे मढ़ देता है, तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय बाबा ने क्या युक्ति बताई? बच्चे जो आपकी ग्लानी करता है ना, उसके गले में भी माला डालो, फूल डालो, उसकी महिमा करो। देखो बाबा ने हमें ये युक्ति बताई है। क्यों? अच्छा, अगर हम ग्लानी करने वाले की उल्टी ग्लानी करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? और ग्लानी हमको लगती कहाँ है? स्वामी विवेकानंद का समकालीन एक स्वामी राम तीर्थ था, तो उस जमाने में, अब तो इन सन्यासियों की हम बहुत महिमा करते हैं, लेकिन जब ये थे तब तो लोगों ने इनको भी पत्थर ही मारे थे। तो स्वामी राम तीर्थ को भी ऐसे ही किसी ने कुछ कह दिया, तो देखो जब वो वापस लौटता था ना तो अपने से कैसी बातें करता था, जैसे मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है राम, अपने को राम कहता था, तो कहता था राम आज तो तूने बहुत गाली खाई, और जब तू गाली खा रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, माना आत्मा अपने शरीर से बात कर रही है। गाली किसने खाई? शरीर ने खाई। बोलने वाला किसको देख के बोल रहा है? शरीर को देख के बोल रहा है, उसे आत्मा तो दिखाई नहीं देती। तो वो अपने से बातें करता था, जब तुम गाली खा रहा था ना तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मजा आ रहा था। तो वास्तव में गाली लोग देते किसको है? जो भी कुछ होता है शरीर को देख के ही तो करते हैं ना। अच्छा, आत्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है? हम एकांत में बैठ करके देखें कि मुझ आत्मा का ना तो कोई कोई टुकड़ा काट सकता है, ना कोई उसे मैला कर सकता है, ना उससे कोई गुण छीन सकता है, ना उसको कोई काला कर सकता है, क्योंकि वहां तक तो किसी की पहुंच ही नहीं। अगर आत्मा का कोई शत्रु है तो आत्मा स्वयं है, इसके अलावा कोई शत्रु है ही नहीं। अगर मैं अपने आप को काला करूंगी, दाग लगाऊंगी, कमजोर करूंगी तो वो मैं ही हूं, कोई दूसरा तो ये काम कर ही नहीं सकता। और इसलिए महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो उसने कहा दुनिया में मेरा एक ही शत्रु है और उसका नाम है मिस्टर M.K. गांधी, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, इसके अलावा मेरा कोई और शत्रु ही नहीं। तो कोई व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर बिगाड़ते हैं तो केवल हम अपने बारे में गलत सोचते हैं, हीन सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो ये दोष दूसरे का है कि मेरा है? ये तो मेरा है, मुझे किसने कहा कि तुम अपने बारे में गलत सोचो, नेगेटिव सोचो? इसलिए अगर किसी ने ग्लानी की तो उसके गले में माला डालने में हमारे नंबर बनते हैं, अच्छी बात है, उसने मुझे सावधान किया, हो सकता है उसकी ग्लानी से मेरा कोई अवगुण निकल जाए। इसलिए बाबा ने कहा आज जो ग्लानी करता है वो आपका भला करता है, क्योंकि उससे आप सुधरोगे, सुधरोगे, सुधरते सुधरते बहुत बड़े राजा बनोगे, और वो व्यक्ति राजा के पास प्रजा बन के आएगा। द्वापर में जब आप बड़े से इष्ट बनोगे तो आपका भक्त बन के आएगा और आपके गले में फूलों की मालाएं डालेगा, गुलाब की मालाएं डालेगा, वो तो रोज डालेगा, आपने तो एक ही दिन डाली। इसलिए रहम दिल बन करके माफ भी करें और सामने वाले के लिए अच्छा भी सोचें, ऊंचा भी सोचें, उसके भले की कामना भी करें, तब वास्तव में हम रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे कहलाएंगे। ये बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि जब हम रहम दिल बन जाते हैं तो हमारा एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता। रहम दिल आत्मा निरंतर आत्म चिंतन करती है, कल्याण का चिंतन करती है। अगर वो रहम दिल नहीं होगी, बदले की भावना आएगी, समय उसका नष्ट जाएगा। अगर वो और कोई गुप्त तरीके से अंदर ही अंदर दुखी होगी, बदला ना भी ले लेकिन अंदर में खुद दुखी होगी, तो भी उसका समय व्यर्थ जाएगा। लेकिन अगर वो रहम दिल है तो उसका एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जा सकता, और कैसी भी परिस्थिति में वो विश्व कल्याण का काम करती ही रहेगी, और विश्व कल्याण में हमारा अपना कल्याण तो समाया हुआ ही। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अब आपका जो अंतिम स्वरूप है वो रहम दिल का स्वरूप है। अब दुनिया की आत्माओं को लंबे चौड़े भाषण नहीं चाहिए, अब उन्हें रहम चाहिए। रहम एक तरह से मरहम का काम करता है। जैसे किसी को चोट लग गई तो लगी हुई चोट पे अपन सीधी पट्टी नहीं बांधते, पहले क्या करते हैं उसके ऊपर मलहम लगाते। मलहम लगाएंगे, खून बंद होगा, घाव के ऊपर जो भी थोड़ी सख्त हो जाती है त्वचा वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, और वो मलहम अंदर जाकर के खून में घुल करके भी उस चोट को घाव को खत्म करने में मदद करेगी। उसके बाद हम ऊपर से पट्टी बांधते। तो बाबा कहते हैं आप भी सीधा ज्ञान नहीं सुनाओ। दुनिया के हर मनुष्य को बड़े बड़े घाव हैं, चोट है, तो पहले उस घाव चोट के ऊपर मरहम लगाओ और उसके बाद उसको ज्ञान सुनाओ, तो वो ज्ञान की पट्टी काम करेगी। और जो चोटिल लोग हैं और जो बीमार लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके दुख दूर होंगे। दुनिया को आप बच्चों से अभी रहम की कामना है। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट योग करेंगे। मैंने 5 मिनट पहले पूरा किया। हम इमर्ज करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आत्माएं हैं जिनको मुझे रहम का दान स्पेशल देना है। अगर अभी तक कभी ना दिया हो तो आज मैं उन्हें स्पेशल रहम का दान दूं, शुभ भावनाओं का दान दूं, करुणा का दान दूं, ताकि उस आत्मा का मेरे साथ रिश्ता भी अच्छा हो जाए और उसका जीवन सशक्त भी बन जाए, हमारी करुणा की किरणें उसको सशक्त बनाए। हम सब इमर्ज करेंगे ऐसी आत्माओं को और उन्हें शुभ भावनाओं का बल देंगे।